मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग आईएएस 2022 की तैयारी के नवे अध्याय के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दो समाचार आप सबके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो आपने अखबारों में पढ़ा ही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमारी वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है और ये भारत की बहुत बड़ी सफलता कही जा रही है। अभी तक हमारी वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमति नहीं दी थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से देश ऐसे थे कि उन्होंने भारतीय वैक्सीन लगवा रखी है लेकिन आप उनके देश में नहीं जा सकते, वीजा की दिक्कतें हो रही हैं, यहां प्रवेश नहीं कर सकते, इस तरह की दिक्कतें हो रही क्योंकि उसे वैश्विक मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे वैश्विक मान्यता दे दी है तो ये सारे जो अवरोध थे ये समाप्त हो गए और साथ ही साथ अब भारत को एक मौका मिला है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करके दुनिया के देशों को भेज सके। ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात तो है ही है, गतिविधि है, उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इससे बड़ी जो बात है वो ये है कि दूसरे देशों के मन में भारत के प्रति कहीं ना कहीं एक सहयोग की भावना पैदा होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अक्सर ये विवाद में बना हुआ है कि जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो महंगी वैक्सीन खरीद सकें और भारत की वैक्सीन बहुत सस्ती है उनकी तुलना में। दूसरी बात यह भी है कि दुनिया के दूसरे देशों के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो इसकी मांग की पूर्ति कर सकें, भारत ऐसा कर सकता है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसे अनुमति दी है, इस अनुमति को आप इस रूप में अपने दिमाग में रखें, हो सकता है कि यह जानकारी या यह विश्लेषण कहीं आपके काम आ जाए। इसी में काम आ सकता है कि भारत किस तरीके से धीरे धीरे विश्व शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा योगदान है भारत का दुनिया के लिए। जो दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो आप ग्लासगो में जो बकायदे COP26 का जो सम्मेलन चल रहा है वो आप देख रहे हैं, लगभग 200 देश के जो हेड्स हैं उसमें भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ लगभग 20,000 प्रोफेशनल लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। प्रोफेशनल लोग कहने का मतलब है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बीच में आपने एक नारा जैसा वाक्य पढ़ा होगा जो भारत ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वह वाक्य है या नारा है कह लीजिए, स्लोगन है, वन सन वन अर्थ वन ग्रीड, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रीड। और इस पर अब काफी बातें हो रही हैं, इसे थोड़ा सा देख लें कि क्या है। देखिए, जो ग्लासगो सम्मेलन है या कह लीजिए जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो उसके केंद्र में क्या है, केंद्र में है कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए या कह लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम हो, कम किया जाए। इसे आप कैसे कम करेंगे क्योंकि पूरी इंडस्ट्री और हमारी जो जीवन पद्धति है वो इसी पर बेस्ड हो गई है, तो एनर्जी तो हमें चाहिए, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम जो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनमें तब्दील कर दें। अभी कोयला सबसे प्रमुख स्रोत है, पेट्रोलियम पदार्थ सबसे प्रमुख स्रोत है, तो इसकी जगह पर अगर हम सौर ऊर्जा को ले आए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो एक सूर्य का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में सूरज तो एक ही है, तो रिसोर्स का जो एक माध्यम है, एनर्जी के रिसोर्स का जो एक माध्यम है वह सूर्य है। एक विश्व, फिर विश्व भी एक है, पूरी दुनिया एक है, अभी विश्व तो एक है लेकिन उसमें दुनिया भर के देश हैं, ठीक है, देश अलग अलग हैं, तो अपने अपने ढंग से वो जो एनर्जी की डिमांड है उसे पूरा कर रहे हैं, कोई किसी के जरिए, कोई किसी के जरिए, कोई किसी के जरिए। एक सूर्य एक विश्व कहने का मतलब है कि ये जो एक सूर्य है इससे दुनिया के लोग एनर्जी बनाए, दुनिया के राष्ट्र एनर्जी बनाए, और फिर ये जो एनर्जी बन रही है ये फिर अब देंगे कैसे, पूरी दुनिया के लिए है ये एनर्जी, तो उसके लिए जरूरत होगी एक ग्रिड की। ग्रिड का मतलब है सप्लाई चेन, या यूं कह लीजिए जैसे नहर बनती है या कह लीजिए कि गैस पाइपलाइन बनती है, एक पाइपलाइन है जहां सहां तक वो पाइपलाइन जा रही है वहां तक आप बकायदे गैस के और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई कर सकते हैं। नहर नहर में पानी जा रहा है, जहां जहां से नहर गुजर रही है उस पूरे क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। तो ग्रीड, पूरी दुनिया को भी ग्रीड से जोड़ा जाए, एक ग्रीड से जोड़ा जाए। तो सोलर एनर्जी आप उत्पादित कीजिए, उस ग्रीड में डाल दीजिए, यानी कि उस नहर में डाल दीजिए, और फिर पूरी दुनिया को पहुंचाइए, जिसको जितने एनर्जी की जरूरत होगी वो उतनी एनर्जी लेता रहेगा। और इस तरीके से बकायदे जो अभी उत्सर्जन के जो माध्यम हैं वो बदल जाएंगे। और जब हम सोलर एनर्जी पर आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो कार्बन CO2 कम करने की बात कही जा रही है उसे हम हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये इसके केंद्र में है। यहां मैं एक दो बातें आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा भारत के संदर्भ में। पहली बात तो यह है कि ये इसकी जो शुरुआत की गई है, भारत है उसमें और ब्रिटेन है, दो देशों ने की है। और किसका सहयोग लिया है? दो एजेंसीज का सहयोग या दो संस्थाओं का सहयोग कह लीजिए। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लगभग 124 देश इसके मेंबर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शुरुआत 2015 में नई दिल्ली से ही हुई थी। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो सोलर अलायंस है वो टेक्नोलॉजी इन सब पर काम करेगा, और जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंस करेगा, पैसों की जरूरत होगी वो पूरा करेगा। तो इनके सहयोग से अभी ये केवल एक संकल्पना है, याद रखिए, है ना, ये एक विचार है। भारत ने जो अपना जो प्रारूप पेश किया है उसमें यह है कि भारत सबसे पहले तो इंडियन सोलर ग्रिड बनाएगा, हम अपने देश में ऐसा ग्रिड तैयार करेंगे, एक नहर तैयार करेंगे एनर्जी के लिए। फिर उस ग्रिड को बकायदे जो पश्चिम एशिया है, जो दक्षिण एशिया है और जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उन देशों से उसे हम जोड़ देंगे, और बाद में इसे फिर अफ्रीकी देशों से जोड़ दिया जाएगा। तो और फिर इस ग्रिड की मदद से जिस देश को जितने एनर्जी की जिस समय जरूरत होगी उतनी एनर्जी उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप ये कह लीजिए कि जो एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड की जो बात है वो बेसिकली ऊर्जा नेटवर्क, इस शब्द को आप याद रख सकते हैं कि ऊर्जा नेटवर्क की दिशा में पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम है, पहली अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दिमाग में ये बात बहुत साफ तौर पर याद के रूप में मौजूद होनी चाहिए। आगे अगर इस पर कुछ और बात होगी तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आपको ध्यान होगा कि मैंने आप सबको सोचने के लिए एक बिंदु दिया था, और बिंदु यह था कि क्या कारण है कि जो टॉपर्स होते हैं, और टॉपर्स में फर्स्ट 10, फर्स्ट 20 आप किसी को भी ले सकते हैं, कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आप देखिए उनके स्कोर तो 300 के आसपास तक वो पहुंचा देते हैं, लेकिन जब जनरल स्टडीज की बात होती है और जनरल स्टडीज के चार पेपर्स की बात होती है तो तीन पेपर में तो बहुत ही उनका आप यूं कह लीजिए कि कम स्कोर होता है, हार्डली 45%। हाँ, वो जो फोर्थ पेपर है एथिक्स का तो उसमें उनका स्कोर बेहतर हो जाता है, मोर देन 50% वो स्कोर कर लेते हैं। तो ये तीन पेपर अगर हम ले लें या कंबाइंड चारों पेपर को मिला लें जनरल स्टडीज में, तो उनमें उन पेपर्स में उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं, आप इस पर विचार कीजिए। आपको विचार करने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि इससे आप मेरी इस बात को शायद समझ पाएंगे, और समझने से भी ज्यादा बड़ी बात है कि शायद मेरी बात पर विश्वास कर पाए जो मैं ये कह रहा हूं कि कम पढ़ें, लेकिन उन सबको पढ़ें जो आपको पढ़ना है। और ये दोनों कम बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि कम पढ़े का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ना है उसको छोड़ करके और फिर कम पढ़ें, घंटे कम कर दें, जो सिलेबस है उसको कम कर दें, नॉट एट ऑल, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं जो कम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ करके इस संदर्भ में कर रहा हूं, क्योंकि एक भ्रम सा फैला दिया गया है या फैल गया है, पता नहीं क्या कारण रहा है, कि यह बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, इस आसमान के नीचे जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। फिर किताब की दुकान में गए तो भैया जितनी किताबें मिल रही हैं ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीद लो। जब मैगजीन्स वगैरह के शॉप में गए तो अच्छा ये नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं तो ये भी दे दो, इसके नोट्स हैं तो ये भी दे दो, अच्छा ये भी मैगजीन दे दो, ये भी मैगजीन दे दो, अच्छा ये भी दे दो, और इतना ढो करके ले आते हैं जितना उनका दिमाग कभी ढो ही नहीं सकता। और उस सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं और दिमाग में कुछ नहीं रहता, और जो रहता भी है वो इतना हचपच रह जाता है कि उनके किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, इसे आपको समझना होगा, इसे आपको समझना होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को कूड़ा घर नहीं बना सकते। भले ही वो कूड़ा आपने ही इकट्ठा किया हो, जब ढेर सारी जानकारियां व्यर्थ की जानकारियां हैं तो उसे मैं क्या कहूं? अगर मैं उसे कूड़ा कह रहा हूं तो कोई गलत नहीं कह रहा हूं, उसका कारण है। अब आप देखिए कि जो मैंने टॉपर्स की बात कही, ये टॉपर्स जनरल स्टडीज के पेपर्स में ही 60% क्यों नहीं ला पाते? इसका बहुत ही छोटा सा उत्तर है। इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि अगर उसमें उन्हें 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो वे सभी 20 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इस पर सोचिए कि क्यों नहीं कर पाते हैं। और जो कुछ भी वो सॉल्व भी करते हैं, जितने वो सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस में वो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि छोड़ने की गुंजाइश है, छोड़ रहे हैं ना वो। और इसके बाद जो 15 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है उसका बहुत ही स्पेसिफाइड सिलेबस है, किताबें हैं, और उन पर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, और जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो बहुत अननोन से नहीं होते। लेकिन जनरल स्टडीज के साथ चैलेंज ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, लेकिन सिलेबस तो है, तो जो तैयारी भी होती है वो उस तरीके से नहीं हो पाती कि उसका बहुत ही वो एक्यूरेट या जो रिक्वायर्ड आंसर है वो दे सके, क्योंकि प्रश्न पूछे ही इस तरीके से जाते हैं कि जहां जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घूम जाता है, भटक जाता है, या उसकी तैयारी में थोड़ी सी चूक हो जाती है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ दो बातें, आप कितनी भी तैयारी कर लें आप पूरे प्रश्न हल नहीं कर सकते, और दूसरी बात, जो आप हल कर भी रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे जरूर होने चाहिए और होते ही हैं कि उन्हें वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो यहां जो मैं बात अंतिम रूप से आपसे कहने जा रहा हूं वो कुल मिलाकर के यह है कि ये जो छोड़ने की गुंजाइश है, ये गुंजाइश इस बात को सिद्ध करती है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ भी लेंगे तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप सारे क्वेश्चंस बनाकर आ जाएंगे। दोस्तों, मेरे इस बात पर आप फिर विचार करें, आपस में अगर दोस्तों के साथ आप हैं तो डिस्कस करें। अगर आपके मन में कोई और संदेह उत्पन्न होता है तो आप मुझे मेल करें, मैं कल उसका जवाब देना चाहूंगा और फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच जो होने वाली हैं, उसके लिए एक स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अमृत नारायण सतपति ओडिशा से, सुखराम बाड़मेर राजस्थान से, वरुण शुक्ला और मोनिका शेरावत। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।